ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون وقال تعالى إنك لعلى خلق عظيم। आज की इस मजलिस में जो बातें आप हजरात के सामने आईं, मैं तो अंग्रेज़ी के एक लफ्ज़ से भी वाकिफ़ नहीं हूँ। बैठता हूँ, तवज्जो भी करता हूँ कि कुछ समझ में आवे, लेकिन सुबह हजरत मौलाना अब्दुल हमीद साहब का जो बयान हुआ, कुछ मेरे पल्ले तो पड़ा नहीं। अभी हजरत मौलाना इब्राहिम साहब का हुआ, उसमें भी मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। ऐसी मजालिस में आम तौर पर ये होता है कि अगले जो बयानात होते हैं उनका भी कुछ न कुछ हवाला दौरान गुफ्तगु दिया जाता है, लेकिन जब समझ में ही नहीं आया हो तो अब क्या करेंगे। हजरत मौलाना सुलेमान साहब ने जो बातें कही, अलबत्ता वो हमारी समझ में आई क्योंकि वो उर्दू में थी। खैर, बहरहाल हमारे लिए जो मौजू तजवीज़ हुआ है उसने अखलाक का, मैं सोचता हूँ कि जो आदमी खुद इस नियामत से महरूम है भला इस मौजू पर क्या बात करेगा। लेकिन जो चीज़ें किताबों में पढ़ी हैं, इस उम्मीद पर अर्ज़ करता हूँ कि पहले अपने आप को मुखातब बनाता हूँ, अल्लाह तबारक ताला इन सिफात से मुझे भी कुछ हिस्सा अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुस्न अखलाक की बहुत ताकीद फरमाई। खुद अपनी बासत का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ये इरशाद फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, और मुअत्ता इमाम मालिक के अल्फाज हैं, बुइस्तु लिउतम्मिमा हुस्नल अखलाक, कि मैं इसलिए भेजा गया हूँ दुनिया में ताकि अच्छे अखलाक को पाए तकमील तक पहुँचाऊँ। वह आपकी बासत का मकसद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यही बतलाया। आप खुद अपने लिए حسن اخلاق کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے، حالانکہ آپ تو اعلیٰ اخلاق کے اونچے سے اونچے مقام پر فائز تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہ امت کی تعلیم و تربیت کے لیے ہوا کرتی ہیں، اس لیے ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ گویا امت کو حسن اخلاق کی اہمیت کی طرف متوجہ فرماتے ہیں. اللہم اہدنی لحسن اللہم اہدنی لحسن الاخلاق فإنه لا يهدی لحسنها الا انت وصرف عنی سیئها فإنه لا يصرف عنی سیئها الا انت. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تو اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، تو ہی اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما سکتا ہے. اچھے اخلاق جو ہیں نا وہ کسی کے اختیار کی چیز نہیں ہے. ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اچھے اخلاق سے متعلق چند چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں اور یہ وہ اخلاق ہیں کہ کبھی باپ کے اندر ہوتے ہیں بیٹے میں نہیں ہوتے، بیٹے میں ہوتے ہیں باپ میں نہیں ہوتے، آقا میں ہوتے ہیں غلام میں نہیں ہوتے، غلام میں ہوتے ہیں آقا میں نہیں ہوتے. حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے خاص شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کسی کے بس کی چیز نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ جو ارشاد میں نے نقل کیا اس میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہی بتلانا چاہتی ہیں کہ یہ کوئی وراثت کی چیز نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو باپ میں ہونے والے اچھے اخلاق بیٹے میں بھی آتے، حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ اچھے اخلاق کا مجموعہ ہوتا ہے، بیٹے میں اس کا ایک شمع بھی نہیں ہوتا، کبھی معاملہ برعکس ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں وراثت نہیں چلتی، بلکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے دعا کے ذریعے سے ہم کو متوجہ فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یقول اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میرا چہرہ اچھا بنایا ہے، تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی طرف بھی امت کو متوجہ فرمایا. ویسے حسن اخلاق کی بڑی تاکید ہے احادیث کے اندر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اسی روایت کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نقل کیا ہے. ریاض الصالحین میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں بزرگوں کا حوالہ دے کر کے اس روایت کو پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبی سیئت الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور تم سے اگر کوئی برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس کے بعد نیکی کو کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹائے گی. ویسے صغائر کے لیے تو ہے ہی کہ نیک اعمال صغیرہ گناہوں کو کے لیے کفارہ بنتے ہیں حدیث سے، اور جہاں جہاں بھی قرآن اور حدیث میں اعمال صالحہ کے کفارہ ہونے کا تذکرہ آیا ہے اس کے متعلق تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد صغائر ہیں, صغائر کے حق میں کفارہ بنتے ہیں, اور کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے. توبہ خود بھی ایک بہت اونچا نیک عمل ہے جو کبیرہ گناہ کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے. اور تیسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, وخالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا, ما اکثر ما یدخل الناس الجنۃ, سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں لے جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, تقوی اللہ و حسن الخلق, کہ اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق, یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے, ابو داؤد شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله, ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنے جو اچھے اخلاق والے ہیں اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. دیکھو یہ جملہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے, یہ اس لیے کہ آدمی کے اچھے اخلاق کا سب سے بڑا مظہر اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے یہاں معمول تھا کہ آپ سے تعلق رکھنے والے جو اہل علم ہوا کرتے تھے ان سے آپ رپورٹ حاصل کرتے تھے کہ ان کے گھر والوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے. حضرت مولانا عبدالحق صاحب عمر جی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے خود مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت مسیح الامت حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمت اللہ علیہ نے کہا, مجھ سے یوں کہا تھا کہ اگر اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھو تو بھی معاف کر دو ایک مرتبہ. پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ حضرت جب یہاں تشریف لاتے تھے افریقہ میں تو اپنے متعلقین جتنے بھی علماء ہوتے تھے ان کے گھروں پر جب جاتے تھے تو ان کے گھر والوں سے پوچھتے تھے کہ ان کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا ہے. اور ہمارے شبیر بھائی لمبات نے مجھے اس کل بتلایا کہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف لائے تھے, ان کے گھر والوں سے دو تین مرتبہ پوچھا کہ ان کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا ہے. یہ ہمارے اکابر اس چیز کو خاص طور پر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی, کہ میں تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اس لیے کہ سب سے زیادہ آدمی کو اپنی زندگی میں جو واسطہ پڑتا ہے وہ اپنی بیوی سے, باپ کو بھی بیٹے سے اتنا واسطہ نہیں پڑتا, بھائی کو بھائی سے اتنا واسطہ نہیں پڑتا, ماں کو بیٹی سے اتنا واسطہ نہیں پڑتا جتنا باپ شوہر کو بیوی کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. ان دونوں کا تعلق ایسا ہے گویا 24 گھنٹے کا اور پوری زندگی کا, جدائی کا سوال ہی نہیں. تو وہاں اس آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ حضور فرماتے ہیں, وانا خیرکم لاہلی, اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے کے اعتبار سے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ, بخاری شریف کی روایت واقعہ موجود ہے, ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین میں سے ایک کے یہاں تشریف فرما تھے, ان کی باری تھی, تو دوسری امہات المومنین میں سے ایک نے جو ہے وہ کوئی کھانے کی چیز پیالے میں خادمہ کے ساتھ وہاں بھیجی. جب وہ خادمہ وہاں لے کر کے پہنچی تو وہ جن کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا ان کو آئی غیرت اور انہوں نے مارا ہاتھ, تو وہ پیالہ بھی نیچے گرا اور ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی ساتھ کھانا بھی سب بکھر گیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم उस खाने को आपने जमा फरमाया अपने दस्ते मुबारक से, और प्याले के टुकड़े भी जमा फरमाए, और आपकी ज़बान पर ये अल्फाज थे, गारत उम्मुकुम, कि तुम्हारी माँ को गैरत आ गई, गैरत आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अलावा और कुछ नहीं, उनको डांट डपट नहीं की। आप बतलाइए कि ऐसा मामला अगर हमारे साथ पेश आया होता तो हम वो प्याला तो अपनी जगह पर रहा, हम उसी की खबर ले डालते। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, अजवाज मुतहरात अपने मामलात, अपनी बातें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब पेश करती थी तो उस वक्त तो उनकी आवाज़ें भी ऊंची हो जाती थी। बुखारी शरीफ के अंदर वाक़िया मौजूद है कि एक मरतबा अजवाज मुतहरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मुतालबात पेश कर रही थी और उसी में उनकी आवाज़ें भी बुलंद हो रही थी। इतने में हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। उनको क्या मालूम कि अंदर क्या हो रहा है, उन्होंने अंदर आने की इजाज़त चाही। अभी तो खाली उन्होंने इजाज़त चाही थी। उनकी आवाज़ सुनकर तमाम अजवाज मुतहरात पीछे पर्दे के पीछे चली गई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को इजाज़त दी। बुखारी शरीफ में यह वाक़िया मौजूद है इसी तफसील के साथ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, अंदर आए तो देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे, तो हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अज़हका अल्लाह सिन्नका मायूज़ेकोका। ये कैसे अजीब व गरीब आदाब उम्दा से उम्दा हमको शरीयत ने बतलाए कि भाई किसी को आप हंसता हुआ देखें और उसके हंसने की वजह पूछना चाहें तो पहले तो आप उसको दुआ दे दीजिए कि अल्लाह आपको और हंसाए, हंसता रखे। ज़रा ये तो बतलाइए कि आप क्यों हंस रहे हैं। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यही कहा। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, मुझे इन पर ताज्जुब है। उधर पर्दे के पीछे हजरत उम्मातुल मोमिनीन की तरफ इशारा किया कि अभी आपके आने से पहले तो वो बुलंद आवाज़ से मुझसे बातें कर रही थी और आपकी इजाज़त के तलब करने की आवाज़ सुनकर एकदम पीछे चली गई। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने किया, अल्लाह के रसूल, इनको तो आपसे डरना चाहिए। और फिर उधर उम्मातुल मोमिनीन की तरफ मुतवज्जे होकर कह फरमाने लगे कि या अदुवात अनफुसिहिन्न अतहम ननी वला अतहम न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अपनी जान की दुश्मनों, हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई इन अल्फाज से हजरत उम्मातुल मोमिनीन को हजरत उमर ही खिताब कर सकते हैं। समझाया कि नहीं, कहा तुम मुझसे डरती हो, अल्लाह के रसूल से नहीं डरती। तो उस पर अंदर से हजरत उम्मातुल मोमिनीन रिदवानुल्लाह तआला अलैहिन अजमईन ने कहा कि अंता फज़ो अगलो अगलो, आप तो अक्खड़ आदमी हैं, सख्त मिजाज आदमी हैं। तो अब उन्होंने जब ऐसी बात कही नहीं, उनकी तरफ से ये जवाब में ये जुमला कहा गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी समझा कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की दिलजोई की जाए। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया, या इब्ने अल-खत्ताब, इब्ने खत्ताब ठहरो, आपका हाल तो यह है कि आप जिस गली से गुजरते हैं शैतान भी उस रास्ते को छोड़ देता है। ये बुखारी की रिवायत है। तो बहरहाल बात उस पर चल रही थी कि अल्तफ़हुम बेअहलिही अकमलुल ईमान मोमिनीन ईमानन आहसनुहुम खुलकन व अल्तफ़हुम बेअहली। आज की इस मजलिस में हुस्न अखलाक का एक सबसे बड़ा ये लेकर के जाना हर आदमी घर अपने जा कर के, ये सोचना कि भाई हमारी घरवाली के साथ हमारा मामला क्या है। लोग लोगों से मिलते हैं, हंस हंस के मिलते हैं, जो है मुस्कुराते हैं, सर झुकाकर सलाम करते हैं, लेकिन बीवी के साथ उनका मामला फिरौन से कम नहीं होता। समझा गया। हजरत हकीम अख्तर साहब नवरल्ला उमर खदू का एक बात, जहाँ बीवियों इसके बीवियों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, उसमें का इबादत में तो ऐसा मालूम होता है जैसे हज़रत जिब्रील हो, लेकिन बीवी के साथ मामला उनका इतना ख़तरनाक होता है। ये हकीकत तो यही है कि आदमी के अखलाक का पता वहाँ चलता है। इसलिए अपना अपना मेयार अखलाक में कितना ऊंचा है ये देखना हो तो घर में आपके पास उसका ये मौजूद है नाप के मेयार मालूम करने का। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा पूछा, अला उखबिरुकुम बे अहब्बिकुम इलल्लाह व अक़रबिकुम منی مجلسن یوم القیامہ, کہ میں تم کو وہ آدمی وہ لوگ نہ بتاؤں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں اور قیامت کے روز مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا ضرور بتلائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنکم اخلاقا, کہ تم میں جو اچھے اخلاق والے ہیں وہ گویا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اور قیامت کے روز مجھ سے قریب بھی ہوں گے. تو اللہ ہی کو اللہ کو بھی محبوب ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی محبوب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں انا احبکم الیہ احسنکم اخلاقا الموطئون اکتافا الذین یعلفون ولا یعلفون ویلفون, کہ تم میں سب سے محبوب میرے نزدیک وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں, جو تواضع کی وجہ سے اپنے جو ہے وہ کندھوں کو جھکائے رکھتے ہیں اور جو لوگوں کے ساتھ اپنی تواضع کی وجہ سے محبت اور الفت سے پیش آتے ہیں اور ان کے اس سلوک کی وجہ سے لوگ بھی ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں. الذین یعلفون ویولفون, گویا کسی کا لوگوں کے ساتھ گلا ملا رہنا یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ وہ گویا اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم ہے. تو اس لیے کہ جو آدمی اس طرح تواضع سے لوگوں کے ساتھ ملے گا وہی اچھے اخلاق والا قرار دیا جائے گا. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں صوفی بھی ہیں, کنز المال یا آپ کی کتاب سب جانتے ہیں علم, اس کا خود ہی انہوں نے خلاصہ تلخیص تیار کی ہے, اس کا نام ہے منہج الامال. اس میں انہوں نے اصول طریقت لکھے ہیں. ان اصول طریقت میں پہلا لکھا ہے, پہلا یہ عقل حلال, اور دوسرا لکھا ہے حسن اخلاق, اور پھر آگے حسن اخلاق کی خود تشریح فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کیا ہے. تمہارا ہر انسان کے ساتھ معاملہ ایسا ہو کہ وہ خوش رہے, البتہ اگر اس کی وجہ سے شریعت کا کوئی حکم ٹوٹتا ہو تو پھر اس صورت کے اندر اللہ کی مرضی کو مقدم رکھا جائے گا, اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی جائے گی. مرضی مولا الہما اولا, اللہ کی خوشنودی سب سے پہلے. کہ کوئی ناراض ہوتا ہو, کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگ جو ہیں نا وہ کہیں غیبت ہو رہی ہے مجلس کے اندر تو وہ لوگوں کی دل شکنی کے خیال سے غیبت سنتے رہتے ہیں. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی دل شکنی سے بچنے کے لیے اپنی دین شکنی نہیں کرنی چاہیے, یعنی لوگوں کا دل نہ ٹوٹے اس خیال سے اپنے دین کو توڑ دینا, دین دل نہیں اپنا دین توڑ دینا. یہ تو لوگوں کی رعایت وہیں تک کی جائے گی جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کی فہرست تو بہت لمبی ہے لیکن ان سب کی بنیاد تواضع ہے. اگر تواضع کوئی آدمی حاصل کر لے تو سارے اخلاق اس کو حاصل ہو جائیں گے, یہ گویا اس کا خلاصہ ہے. اور برے اخلاق کی بھی بہت زیادہ ہیں لے, اور ان کی جڑ جو ہے وہ تکبر ہے. تکبر کو اسی لیے صوفیاء نے ام الامراض قرار دیا ہے. تو جس طرح تکبر ام الامراض ہے اس طرح تواضع ہے ام الاخلاق ہے. آدمی کو تواضع حاصل کرنی چاہیے اور اس کا جتنا زیادہ اہتمام کرے گا وہ اچھے اخلاق سے آراستہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر کے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا حسن الخلق, اچھے اخلاق. سامنے سے آ کر کے پوچھا تھا, چلا گیا, پھر دائیں طرف سے آیا اور آ کر کے پھر یہی سوال کیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا حسن الخلق. پھر چلا گیا, پھر بائیں طرف سے آیا اور پھر یہی سوال کیا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب ارشاد فرمایا. پھر پیچھے سے آیا اور پیچھے سے آ کر کے یہ سوال کیا, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मालक लातफ को क्या बात है, समझता नहीं है, हुस्नुल खुल अच्छे अखलाक सबसे अफजल अमल है, वह हुआ अल्लाह तगज़वा इन इस्तताअत, और अच्छे अखलाक क्या है कि जब जितना हो सके अपने आप को गुस्से से बचाओ। देखो अच्छे अखलाक हासिल करने का तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि अपने आप को गुस्से से बचाने का एहतमाम करो। गुस्से के मुतालिक लिखा है सूफिया ने कि ये अखलाक का जहर है, हुस्ने अखलाक के हक में क्या है, जहर की हैसियत रखता है, इसलिए गुस्से से अपने आप को बचाने का ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लैसत शदीदु बिस्सुरा बलि शदीदु अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, के जो किसी को पछाड़ दे वो पहलवान नहीं है, कुव्वत वाला ताकतवर नहीं है, ताकतवर तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर क्या कर ले, कंट्रोल कर ले। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अच्छे अखलाक मौका ब मौका उसकी ताकीद फरमाई। एक मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, कि तुम में सबसे बेहतर लोग कौन हैं, मैं बतलाऊँ? सहाबा ने अर्ज़ किया ज़रूर बतलाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया खियारुकुम अतवलुकुम आमारन व अहसनुकुम अखलाका। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है कि तुम में सबसे बेहतर वो हैं जो लंबी उम्र वाले हैं और अच्छे अखलाक वाले हैं। और हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल मोमिना लयुद्रिकु बिहुस्न खुल्क़िही दरजत साइम वल काइम। आजकल तो हमारे यहाँ किसी के मकबूल इंदल्ला और बुजुर्ग होने की अलामत यही देखी जाती है कि वो रातों को कितनी इबादत करता है, दिन में कितने रोज़े रखता है। तो उस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी एक मोमिन अपने अच्छे अखलाक की वजह से दिन भर रोज़े रखने वाले और रात भर क़याम करने वाले यानी इबादत करने वाले का मर्तबा हासिल कर लेता है। इससे हुस्ने अखलाक का मकाम शरीयत की निगाह में बहुत ऊंचा है, नफल आमाल के मुकाबले में उसको तरजीह दी गई है। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के रोज़ मोमिन के मीज़ान अमल में सबसे वज़नी चीज़ अगर कोई है तो वो क्या है, हुस्ने अखलाक है। तो हुस्ने अखलाक उसका ख़ास एहतमाम होना चाहिए। उस हुस्ने अखलाक में असल बुनियाद क्या है, जब कुरान करीम की वैसे एक और रिवायत है हज़रत उकबा इब्न आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आए उकबा दुनिया और आखिरत के बेहतरीन अखलाक तुमको मैं ना बतलाऊँ? तो उन्होंने जवाब में अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल ज़रूर बतलाइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसेलो मन कता का, जो आदमी तुम्हारे साथ रिश्ता काटे तुम उसके साथ रिश्ते को जोड़ो, वह तौती मन हराम का, और जो तुमको महरूम रखे न दे उसको तुम दो, और जो है ताफू मन जलम अमन जलम का, और जो तुम्हारे साथ जुल्म और ज्यादती करे उसको माफ़ कर दो। कुरान पाक की आयत ला तस्तवील हसनत वला सैया इदफा बिल्लती ही आसन फैजल्लदी बैनक व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलीयुन हमीम, कि नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकते, इदफा बिल्लती ही आसन, कोई आप आदमी आपके साथ बुराई का सलूक करे तो भले तरीके से उसका जवाब दो, तो क्या होगा, उसका नतीजा ये होगा कि जिसके और आपके दरमियान दुश्मनी है वो तुम्हारा पक्का दोस्त बन जाएगा। जब इस आयत को लेकर हज़रत जिब्रील नाजिल हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा इदफा बिल्लती या हसन, भले तरीके से जवाब क्या है? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिल मन कता का वाफू अमन जलम का वहसिन इला मन असा इलाई का, कि जो आदमी तुमसे ताल्लुक़ काटे उसके साथ तुम जो है ताल्लुक कायम करो, उसके साथ ताल्लुक जोड़ो। असल तो सिला और कता का ताल्लुक रिश्तेदारों के साथ है। जो रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदारी के हुकूक को अदा न करे, तुम उसके साथ रिश्तेदारी के हुकूक को अदा करो। बुखारी शरीफ में है, लैसल वासिलो बिल मुकाफी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी अपने रिश्तेदारों को बराबर का सलूक करे भलाई का, तो वो कोई सिला रहमी करने वाला नहीं है, बल्कि सिला रहमी करने वाला तो वो है कि जा कुत्त रहमहु वसलहा, कि जब उसके साथ ताल्लुक यानी बुरा सलूक किया जाए तो वो अच्छा सलूक करे। आपके भाई ने आपके साथ अच्छा सलूक किया, अपने घर शादी के मौके पर आपको बुलाया तो आपने भी बुलाया, तो ये कोई सिला रहमी नहीं। ये तो कोई अजनबी आदमी भी आपके साथ अच्छा सलूक करेगा और आप में मुरुवत है, शराफत है, तो आपकी शराफत उसके साथ आपको अच्छा सलूक करने पर आमादा करेगी। भाई की क्या खसूसियत है? भाई की खसूसियत तो तब पता चलेगा जब वो आपको गालियाँ दे, आपके ख़िलाफ़ करता हो, तो भी आप जो है उसके साथ अच्छा सलूक करें। शरीयत इसी की ताकीद फरमाती, सिलमन कता का उलमा ने लिखा है कि अच्छे अखलाक की बुनियाद ये तीन चीज़ें हैं। सिलमन कता का रिश्तेदारों के मामले में, जो रिश्तेदार आपके हुकूक की अदायगी का अहतमाम नहीं करते, उनकी हुकूक की अदायगी का अहतमाम करो। हमारे अकाबिर के यहाँ इसका बड़ा अहतमाम होता था। हज़रत शेख नवर अल्लाह उमर कदहू फरमाते हैं, हजरत के हमारी हजरत हजरत माना इल्या साहब, कभी उनको कांजला आना होता था, हजरत फरमाते थे वो मुझे इत्तला करवा देते थे, उधर दिल्ली से इधर सहारनपुर आने वाली गाड़ी में वो कांजला आते थे, मैं सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी में, खैर वहाँ दोनों वहाँ फिर रिश्तेदार था। हजरत शेख का मामूल था थोड़ी देर के लिए भी जब कांजला तशरीफ ले जाते थे अपने तमाम रिश्तेदारों से मुलाकात। एक मरतबा हजरत जो है एक दूसरे रिश्तेदार को अपने साथ लेकर के रिश्तेदारों की मुलाकात के लिए गए। एक रिश्तेदार को किसी वजह से किसी मामले में गलत फहमी हो गई थी। हजरत जब गए तो कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उसने मुंह फेर लिया। हजरत ने हाथ बढ़ाया तो भी उसने ये जवाब नहीं दिया। तो थोड़ी देर हजरत अपनी आदत के मुताबिक बैठे रहे, फिर वापस आए। जो अजीज साथ में गए थे वो कहने लगे, अरे बेहया अब भी आएगा इनके यहाँ? हजरत ने कहा मैं तो आऊँगा। चुनांचे हजरत का फरमाते हैं कि बराबर उसके बाद भी जब भी जाना होता था उनके यहाँ इसी तरह मेरा जाने का मामूल था। हमारे बुजुर्गों के यहाँ वही सिलमन कता का वाला जो है ना, इस पर अमल का बड़ा अहतमाम रहा। वाफू अमन जलमा का, और जो आपके साथ जुल्म और ज्यादती करे उसको क्या कर दो, माफ़ कर दो। वाहसिन, और माफ़ी ने एक कदम और आगे, वाहसिन इला मनासा इलाई, जो आपके साथ बुरा सलूक करे उसके साथ क्या करो, अच्छा सलूक। वैसे तो कोई आदमी बुरा सलूक करे तो उसके जवाब में उतनी ही मकदार में बुरा सलूक करने का आपको हक दिया है शरीयत ने, क्योंकि शरीयत इस्लामिया जो है इंसानी तबाह का भी पूरा लिहाज करती है और अदल और इंसाफ के तकाज़ों को भी पूरा करती है। इसलिए किसी ने अगर आपके साथ बुरा मामला किया हो तो आपको भी इतना हक दिया है, जजाओ सैयतिन सैयतुन मिसलुहा, बुराई का बदला उतनी ही बुराई। फमन अफा व असलहा फाजरुहु अलल्लाह, अलबत्ता कोई आदमी माफ़ कर दे और मामला सुलह का इख्तियार कर ले तो उसका अजर अल्लाह के ऊपर। कयामत के रोज ऐलान होगा, वो लोग उठें जिनका अजर अल्लाह के ऊपर है, जिन्होंने माफ़ किया था जुल्म करने वालों को, तो वो उठेंगे, उनको कहा जाएगा तुमको जो हो पसंद हो वो इख्तियार कर लो। और इन्नहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करते। फिर आगे बारी ताला फरमाते हैं आगे, वलमन इंतसर बादा ज़ुल्मिही फौलाएका मा अलैहिम सबील। कुरान कहता है किसी के साथ जुल्म का मामला किया गया, अगर वो उसके साथ जुल्म करने वाले से बदला लेता है तो उनके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं, हक है। लेकिन बहरहाल ये तो वह बदले की बात, इंसाफ की बात हुई, लेकिन आला तरीका यह है कि आदमी क्या कर दे, माफ़ कर दे। इसलिए आगे फरमाते हैं, वलमन सबर व गफर فإن ذلك لمن عزم الأمور, کہ دیکھو جو آدمی صبر سے کام لے ایسے موقع پر اور معاف کر دے یہ بڑے ہمت والا. دیکھو قرآن نے انسانی نفسیات کا کتنا زیادہ لحاظ کیا کہ عام طور پر ایسے موقع پر جب کوئی آدمی برا سلوک کرتا ہے اور اس کے ساتھ اچھا اس کو معاف کر کے اچھا سلوک کرنے والی بات آتی ہے تو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کو ہماری کمزوری سمجھیں گے, بزدلی سمجھیں گے, اور بولتے بھی ہیں لوگ کسی نے اچھا برا سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا ہو کہ بزدل ہے, اس کے اندر طاقت نہیں ہے بدلہ لینے کی. لیکن قرآن تو ہے بہادری اسی کو بتلاتا ہے, کس کو؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, کہ جو آدمی صبر سے کام لے اور معاف کر دے تو یہ بڑے ہمت والا کام ہے. اور دوسرا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی هی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم, کہ اس نے اگر آپ کے ساتھ برائی کا سلوک کیا ہے تو آپ بھلائی کے ذریعے سے اس کا جواب دیجئے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو آپ کا پکا دشمن ہے وہ آپ کا پکا دوست بن جائے گا. لیکن لا یلقاها الا الذین صبروا ولا یلقاها الا ذو حظ عظیم, یہ توفیق کس کو ملتی ہے؟ یہ سعادت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں اور جو بڑے نصیبے والے ہیں. معاف کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کھا کر تین باتیں ارشاد فرمائی, چونکہ وہاں ظاہر کے خلاف ہوتا ہے اس لیے آپ نے قسم کھائی. آپ نے فرمایا قسم کھا کر, ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ مال کو کم کرتا نہیں. دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے مال کیا ہو جاتا ہے, وہ کم ہو جاتا ہے. اس لیے آپ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ نہیں, دیکھنے میں بھلے ایسا معلوم ہوتا ہو لیکن حقیقت میں صدقے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا, بلکہ صدقہ تو مال میں برکت کا ذریعہ ہوتا ہے. اور آگے وہ تو ہے وما تواضع ومن تواضع للہ رفعہ اللہ, اور جس نے اللہ کے لیے تواضع کی اس نے اللہ تعالیٰ اس کو مرتبے کو بلند کرتے ہیں. اور تیسری دوسری بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزن, کہ کوئی بندہ کسی کو معاف کر دے گا تو اس کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھائیں گے. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ میں معاف کروں گا تو میری عزت چلی جائے گی, نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ بڑھائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی اخلاق کی عملی طور پر ہم کو تعلیم دی ہے. آپ طائف تشریف لے گئے, طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا سب جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑ جس کے بیچ میں یہ آبادی ہے اس کو ملا دیا جائے تاکہ یہ پس کے رہ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, لال اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, وہ مجھ کو نہیں جانتے. اور مشرکین مکہ نے قریش نے 13 سال تک آپ کے ساتھ مظالم کا معاملہ کیا اور اتنے ظلم کیے کہ آپ مجبور ہو کر کے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے گئے, اور مدینہ جانے کے بعد بھی 7 سال تک چین سے بیٹھنے نہیں دیا. 20 سال یہ معاملہ رہا سن ہجری 8 میں. پھر جب آپ مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے صحابہ کے لشکر کو لے کر کے آئے اور مکہ مکرمہ فتح ہوا تو کیا معاملہ کیا آپ نے؟ آپ نے خود ہی ان سے پوچھا تھا کعبۃ اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کے کہ قریش تم کیا سمجھتے ہو تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کروں گا؟ تو سب تو دل میں سہم رہے تھے, معلوم نہیں اب کیا ہوگا. تو سہیل ابن عمرو نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب میں عرض کیا کہ اخن کریم و ابن اخین کریم, کہ آپ تو ایک شریف بھائی ہیں, شریف بھائی کے بیٹے ہیں, ہم آپ سے بھلائی ہی کی امید رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم, आज तुमको कोई तानो तशनी नहीं की जाएगी। इधबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब आजाद हो। ला तसरीब, ये जुमला खास है। देखो हम तो कभी किसी को माफ भी कर दे ना तो दो कड़वे बोल तो जा यार तू तो है नालायक ही है, लेकिन छोड़ देते हैं। दो कड़वे बोल तो बोल ही देंगे, समझा है कि नहीं। ये टॉन्टिंग टॉन्टिंग किए बगैर माफ नहीं करते, माफ करने वाले भी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला तसरीब, आज तुमको कोई तानो तशनी नहीं होगी। तो ये असल ये अखलाक तो इसी का नाम है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को जा रहे थे, एक आदमी आपको बुरा भला कहने लगा और आप खड़े हो गए सर झुकाकर, चुपचाप देर तक सुनते रहे। जब वो अपनी सारी बातें कह चुका तो सर उठाकर अपने गुलाम अपने शागिर हजरत इकरमा से कहती, इकरमा इनसे पूछो अगर इनकी कोई हाजत हो जिसको हम पूरे कर सकते हो तो पूरा करें। वो आदमी तो बिल्कुल शर्मिंदा हो गया। ये अखलाक हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है कि एक मरतबा एक आदमी ने आपको तमाचा मार दिया तो नबी हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देखो कि बड़ी तवाजु के साथ आपने जवाब दिया कि देखो अगर मैं चाहता तो मैं भी तुमको तमाचा मार सकता था, लेकिन मारूंगा नहीं। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी शिकायत बादशाह वक्त तक पहुँचाऊँ, लेकिन ऐसा भी नहीं करूँगा। मैं अगर चाहूँ तो रात को जो है तुम्हारे लिए अल्लाह के हुजूर बद्दुआ करूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं करूँगा। और अगर मैं चाहूँगा तो कल को क़यामत के रोज़ इसका बदला अल्लाह के यहाँ तुमसे मांगूँगा, लेकिन ऐसा भी नहीं करूँगा। बल्कि अल्लाह ताला ने अगर मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और मुझे जन्नत में जाने का फ़ैसला कर दिया और मुझे किसी की सिफारिश का इख्तियार दिया तो तुम्हारे बग़ैर जन्नत में नहीं जाऊँगा। ये नबी करीम ये हजरत उमर हजरत हुजूर हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और उनके सब्र को देखिए। आप रात भर इबादत 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज़ पढ़ी और फजर की नमाज के बाद फौरन आपका जो है दरस शुरू हो जाता था। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं हमेशा इमाम अबू हनीफा की मस्जिद में फजर की नमाज़ पढ़ता था, इसलिए कि आपका दरस फजर के बाद शुरू हो। 29 साल तक हजरत इमाम अबू हनीफा अबू यूसुफ का ये मामूल रहा, जब तक इमाम साहब रहे। इमाम साहब की मस्जिद ही के अंदर ईद उल फितर और ईद अदहा के मौके पर भी आपकी मस्जिद में फजर की नमाज़ पढ़ते थे। फजर की नमाज के बाद आपके दरस का सिलसिला शुरू होता था, लोग मसाइल भी पूछते थे जवाब भी देते थे जोहर तक, और फिर जोहर की नमाज के बाद आप जो है अपने घर तशरीफ ले जा करके आराम करते थे। यही टोटल कुल आपके आराम का वक्त था। एक दिन ऐसा हुआ कि आप आदत के मुताबिक जो है जोहर की नमाज के बाद घर आए। आपका घर ऊपर था बाला खाने पर, तो फ्लोर पर वन आप आकर के अपने बिस्तर पर लेटे ही थे कि ऐसा किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आप उतरे, उतर करके दरवाज़ा खोला, उस आदमी ने सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया। फरमाइए, तो बस मैं तो एक मसला पूछने के लिए आपके पास हाजिर हुआ था, लेकिन मैं भूल गया वो मसला क्या पूछना है। क्या? हजरत ने कहा ठीक है, जब याद आ जाए तो पूछ लेना। आप ऊपर वापस तशरीफ ले गए, जाकर बिस्तर पर लेटे ही थे कि फिर दस्तक हुई। फिर आप नीचे उतरे, वही आदमी, उसने कहा कि आपके जाने के बाद वो मसला याद आ गया, लेकिन जब आप उतर रहे थे आप आधी जीने पर पहुंचे थे फिर मैं भूल गया। तो किसी को गुस्सा ना आता हो तो भी आप, लेकिन नबी करीम साहब ने बिल्कुल नरमी से जवाब दिया ठीक है जब याद आवे तो पूछ लेना। फिर जो है वह आप ऊपर तशरीफ ले गए, अभी लेटे और फिर आप अंदाज़ा लगाओ कि रात भर का जागा हुआ आदमी और फिर यह कि सुबह से लेकर दोपहर तक मशगूल था दरसा के अंदर, उनके साथ ये मामला हो रहा है। तो अब तीसरी मरतबा दस्तक हुई, नीचे उतरे तो वो मसला याद आ गया। कहा क्या है? ताकि इंसान के पाखाने का जायका टेस्ट कैसा होता है। देखो पूछा भी तो कैसा पूछा, गुस्सा किसी को गुस्सा ना आवे तो भी आ जावे, है ना। अब तक सब्र अगर किया था तो सब्र का पैमाना लबरेज हो जाना चाहिए। तो इमाम साहब ने जवाब में फरमाया कि अगर पाखाना जो है गीला हो ताज़ा हो तो उसमें कुछ जो है वो मिठास होती है, और अगर वो खुश्क हो जाए तो वो कड़वा हो जाता है। तो वह आदमी क्या कहता है, आपको कैसे मालूम हुआ कि आपने चखा था? तो हजरत इमाम साहब ने जवाब में इरशाद फरमाया कि भाई हर चीज़ कोई चखने से ही मालूम हो ये ज़रूरी नहीं, अकल से भी बात चीज़ें मालूम होती हैं, इसलिए कि इंसानी पाखाना जब ताज़ा होता है तो उस पर मक्खी बैठती है, और जब खुश्क हो जाता है तो मक्खी नहीं बैठती। मालूम है दोनों के जायके में फ़र्क है। अब ये जब कह चुके तो वो हाथ जोड़ के कहता है, हजरत अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुँचाई लेकिन आपने मुझे हरा दिया। तो हजरत इमाम साहब ने फरमाया कैसे हरा दिया भाई तुमने? तो असल में मेरे अपने दोस्त के साथ शर्त लगी, हमारे दोनों के दरमियान ये बात हुई, उसने यूँ कहा मैंने यूँ कहा कि उलमा के अंदर हजरत सुफियान सौरी बहुत ज़्यादा तहम्मुल वाले और सब्र वाले हैं, और मेरे दोस्तों ने यूँ कहा कि इमाम अबू हनीफा जो हैं वो बहुत ज़्यादा तहम्मुल और सब्र वाले हैं। तो फिर हमारे दरमियान में ये ठहरा कि मैं आपके इमाम जो है आपके आराम के वक्त में इस तरह आऊँ, आपको बार बार सीढ़ी चढ़ाऊँ उतारवाऊँ और इस तरह का सवाल करूँ, देखो आपका क्या हाल होता है। लेकिन क्या कहा, आपने मुझे हरा दिया मेरे दोस्त की शर्त के मुकाबले में। हजरत आहन इब्ने कैस रहमतुल्लाह अलैह सहाबी नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उनके कबीले के अंदर जो है इस्लाम की दावत लेकर भेजा, तो जो सहाबी तशरीफ़ ले गए थे उन्होंने जब इस्लाम की दावत पेश की तो ये अपने कबीले के अंदर बड़े मुदब्बिर समझे जाते थे और बड़े तहम्मुल वाले, उन्होंने अपने कबीले वालों को मशवरा दिया कि भाई इससे बेहतर दावत कोई हो सकती नहीं, कबूल कर लो। सब ईमान ले आए, ये भी ईमान ले आए, लेकिन हुजूर की खिदमत में हाजिरी की नौबत नहीं आई। जो सहाबी ये दावत लेकर के आए थे, बाद में उनकी मुलाकात जब इनसे हुई तो उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए दुआ फरमाई थी। तो ये हजरत अहनब इब्न कैस, बुखारी शरीफ में भी उनका तज़किरा है किताब अल ईमान में, वो फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हजरत अली की जो है मदद के लिए तलवार लेकर निकला, रास्ते में हजरत अबू बकरा मिले कि कहाँ जा रहे हो? कि मैं उनकी मदद के लिए जा रहा हूँ, वो किस्सा वहाँ उसमें है। दोबारा ये अपने तहम्मुल में और जो है वसअत ज़र्फ़ी में बड़े मारूफ थे, तो एक मरतबा उनके दोस्तों ने जो है शर्त लगाई कि उनको किसी तरह भी गुस्सा किया जाए। एक नौजवान को तैयार किया और वो गया, सलाम किया, घर में वो खोला दरवाज़ा, इन्होंने इसने आकर सलाम किया, फिर क्या मैं एक ज़रूरत से आया हूँ। फरमाइए क्या ज़रूरत? वह अंदर घर जान बैठे, कहा मैं जो है आपकी वालिदा से निकाह करना चाहता हूँ और उनका उसके लिए पैगाम निकाह लेकर के आया हूँ। इन्होंने बड़े बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ कहा कि तुम्हारा ख़ानदान बड़ा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम है, आपके साथ रिश्ता करने में हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमारी वालिदा जो हैं बूढ़ी हो चुकी हैं, बड़ी उम्र की हुई है हो गई हैं, तुम नौजवान हो, खूबसूरत हो, तुमको तो अपने जैसी नौजवान औरत से जो खूबसूरत हो निकाह करना चाहिए, जो तुमसे मोहब्बत करे और तुमसे मोहब्बत करवाए और तुम्हारे बच्चों की माँ बन सके। बस उसके बाद कहा जिन लोगों ने तुमको भेजा है उनको बता देना कि मैं उनको गुस्सा नहीं दिला सका। तब उनका मशहूर था कभी गुस्सा कभी नहीं करते थे, हमेशा तहम्मुल से काम लेते थे। तो बहरहाल ये हमारे अकाबिर के यहाँ भी इसका बड़ा अहतमाम था, ऐसे चीज़ों को बहुत वह सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त फरमाते थे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा जौनपुर तशरीफ ले गए और आपका वास्ता वहाँ बहुत सारे मुखालिफिन भी थे, आप जब वहाँ बयान करने के लिए इजलास में तशरीफ ले जा रहे थे तो किसी ने चिट्ठी दी, उस चिट्ठी में लिखा था कि तुम जुलाहे हो, तुम जाहिल हो, तुम काफिर हो, और देखो संभल करके बयान करना। हजरत बैठे बयान करने के लिए तो हजरत ने फरमाया भाई देखो अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में किसी साहब ने मुझे ये चिट्ठी दी, उसके अंदर पहले तो ये लिखा है कि तुम जुलाहे हो। हजरत ने फरमाया देखो अगर मैं जुलाहा भी हूँ यहाँ तो मैं अल्लाह तबरक ताला के अहकाम को बयान करने के लिए आया हूँ, मैं कोई रिश्ता लेकर के नहीं आया, जब और अल्लाह के अहकाम बयान करने के लिए अगर वो वाकिफ़ है तो मैंने अपने बड़ों से जो सुना है और इसी तरह जो मैं बयान करूंगा तो उसमें जुलाह से क्या फर्क पड़ता है, ये तो असल जवाब हो गया। दूसरी बात यह कि जुलाह होना ये बेचारे उसके इख्तियार की चीज़ तो है नहीं, ये तो अल्लाह ताला जिसको जिस कौम में चाहे पैदा फरमा दे। हर आदमी ये तो मैं अपने इख्तियार से तो फला कबीले में पैदा हो जाऊँ, मेरे इख्तियार तो चलता नहीं, अल्लाह ने जिसको जिस कबीले में पैदा किया, ये तो असल बात का जवाब हुआ। बाकी ये है कि अगर आप मेरा ख़ानदान कौन सा है, मैं अपने शहर के चंद मुअज़्ज़ज़ लोगों के एड्रेस देता हूँ, तुम उनसे जाकर मालूम कर सकते हो कि मेरा ख़ानदान क्या है, और अगर मेरी बात पर एतमाद हो तो मैं बता देता हूँ कि मैं ये हूँ। और दूसरी बात जो लिखी है कि तुम जाहिल हो, तो जवाब में हज़रत फरमाते हैं जाहिल नहीं बल्कि अजहल हो, लेकिन जो बातें मैंने अपने बड़ों से सुनी है या मैंने किताबों में देखी है वो आपके सामने बयान करूँगा। अगर कोई बात आपको गलत मालूम हो तो आप उसको ना इख्तियार करें, अमल ना करें। और रही ये बात कि तुम काफिर हो, तो मैं इसी बहस में जाए बगैर कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। चलो अब तक काफिर था, अब तो मुसलमान हो गया, देखो ये कैसा, यानी कितना सब्र और तहम्मुल से ये जवाब दिया है। तो हकीकत तो ये है हमारे हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक है कि हज़रत वह इशाअत सुन्नत के लिए बिदात के मुतालिक बयान फरमाते थे, तो मुखालिफिन के खतूत आते थे आप पर, उसमें गालियाँ दी जाती थी, बुरा भला कहा जाता था। हज़रत माना हज़रत की बिनाई जब चली गई थी तो हज़रत माना यहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत शेख माना ज़करिया साहब के वालिद बुजुर्गवार हैं, वो डाक लिखा करते थे जवाब हज़रत के, लिखवाते थे उनको खतूत, खतूत वो भी पढ़ते, वही पढ़ के सुनाते थे। तो ऐसे खतूत आते थे, पढ़ के सुनाते थे। अब बाद में जब उसका सिलसिला बढ़ा तो उन्होंने सुनाना छोड़ दिया। तो कुछ मुद्दत के बाद हज़रत पूछते हैं, भाई मौलवी यहिया, क्या हमारे दोस्तों ने हमको याद करना छोड़ दिया? क्या आप कोई ख़त नहीं आता, आप सुनाते नहीं हैं? नहीं हज़रत, खतूत तो बहुत आते हैं, लेकिन उसमें सिवाय गालियों के और कुछ नहीं होता। हज़रत ने फरमाया, भाई दूर की गालियों से क्या होता है, सुनाओ। मैं तो इस नीयत से सुनता हूँ कि उनमें जो मेरे ऐब बयान किए गए हैं, अगर कोई ऐब मेरा सच्चा है तो मैं अपनी इस्लाह कर लूँ। तो ये अपने दुश्मनों से भी गोया इस तरह मामला करना, ये वाकया ये है कि ये पाकीज़ा और ऊँचे अखलाक ही की अलामत हो सकती है। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको जिन पाकीज़ा अखलाक को इख्तियार करने की ताकीद फरमाई, उसमें हमें चाहिए कि एक तो हम गुस्से से काम न लें, ये आसान तरीक़ा है अपने अखलाक को दुरुस्त करने का, और दूसरा यह है कि तवाज़ु इख्तियार करें। जितना ज़्यादा तवाज़ु इख्तियार करें, तवाज़ु का मतलब क्या है, अपने आप को कमतर और बेहैसियत समझना, कहना नहीं। एक तो ये कि हम ये कहें मैं बहुत नाचीज हूँ, जो है हकीर फ़कीर, जो है पुर तकसीर, और तो कोई कह दे हजरत हकीर फ़कीर क्या बात है, तो फिर तो जो है आँखें ऊँचे चढ़ जाएगी पेशानी के ऊपर। तो खाली अपने आप को आहकर कहने से काम नहीं था, ये तवाज़ु नहीं। तवाज़ु तो एक हकीकतन अपने आप को बहुत कमतर और जो है बेहैसियत समझना कि मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, और कोई नेकी का काम अगर मुझसे हो रहा है ये अल्लाह की तौफीक से, उसमें मेरे किसी कमाल को दखल नहीं है। इस तरह जो आदमी समझे वह है तवाज़ु। और हकीकत यही है कि ऐसा करने ही से आदमी के अंदर फिर तवाज़ु आके नतीजे में दूसरे अखलाक भी अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक और सआदत अता फरमाए।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।